नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी। विजय सरदाना जी से हम 2024 के इलेक्शन की मेन थीम के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन बात वो शुरू करने से पहले राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स और मोदी की इकोनॉमिक्स और जो बातचीत चल रही है, जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उसके बारे में बात निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन पहले एक सूचना आई है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमने सुना है राघव चड्ढा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी है आज ट्विटर पे बड़ी जोर शोर से खबर उड़ी हुई है। आपके पास कोई जानकारी है क्या?
सर, मैंने तो कई महीने पहले जब ये घोटाला शुरू हुआ था तब एक भविष्यवाणी की थी कि राघव चड्ढा को अगर अपने आप को पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखना है और केजरीवाल से अगर वो दुखी हैं तो नॉन एक्टिव पॉलिटिक्स में, सिर्फ पॉलिटिक्स में रहने के लिए हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बीजेपी को उनकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन राघव चड्ढा को बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि अब उनके नाम के आगे एक चीज लिख दी गई है कि ही इज पॉलिटिक्स, तो उसको तो अपनी बिरादरी में जगह चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के में उसमें धीरे धीरे, जब से उन्होंने परिणीति से शादी करी है, मुझे नहीं लगता कि अब अरविंद केजरीवाल से उनकी उतनी करीबियां रही हैं, इनफैक्ट उसके काफी पहले से। और बात बहुत सिंपल है कि 2000 ये जो पंजाब का चुनाव हुआ था उस समय अगर आपको याद होगा तो एक सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा की जो एंगेजमेंट है या जो रिश्ता पक्का कर दिया गया है राघव चड्ढा के साथ, उनकी बेटी का, ये सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हुआ था। अब अचानक बीच में वो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में मसाला ट्रायंगल एंगल, फिर परिणीति की एंट्री हो गई तो वो चीजें गड़बड़ हो गई, तो वो जो रियल लाइफ था वो वास्तव में रियल लाइफ हो गया, तो वो एक एंगल चल गया। उसके बाद से केजरीवाल और राघव चड्ढा बहुत ज्यादा पास दिखे नहीं, मुझे नहीं लगा उतना क्लोजली कभी उन्होंने राघव चड्ढा को वेटेज दिया। और राघव चड्ढा का सिग्निफिकेंस था पंजाब चुनाव में, और उस समय क्योंकि फाइनेंशियल जरूरत भी थी, तो आप देखेंगे कि जितने भी राज्यसभा के मेंबर जो आज सब खामोश है, कोई भी आदमी केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं है, पंजाब का राज्यसभा मेंबर वो सारे बिजनेसमैन, और वो सारे बिजनेसमैन क्यों आए, क्यों उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ राज्यसभा की सीट शायद खरीदनी थी और केजरीवाल को शायद पैसे चाहिए थे। ये मेरा एक एजम्पशन है, एविडेंस नहीं है, एक एजम्पशन है, और कुछ पर्सनल मेरे ऐसे इंटरेक्शंस रहे हैं जो मैं कह सकता हूं कि हाँ कुछ डील हुई है। तो उस सिलसिले में राज्यसभा के मेंबर बनाए गए और उसका नतीजा आज ये है कि जब आपने राज्यसभा की सीटों की ऑक्शनिंग करी,
जी
आज जब केजरीवाल को राज्यसभा के एमपीज की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए था, एक भी आदमी सीन पे नहीं। तो ये जो मेरा उस समय असेसमेंट था और जो आज हम उसका आउटकम देख रहे हैं, अगर हम दोनों फैक्ट्स को साथ रखते हैं, एज ए लॉयर अगर मैं सरकमस्टांशियल एविडेंस की बात करूं, तो मेरी जो थ्योरी है वो काफी हद तक सही साबित होती है कि राज्यसभा की सीटों का ऑक्शनिंग किया गया था। तो
करेक्ट।
ये एक हाइपोथेसिस है और जो एविडेंस और सिचुएशन है वो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो ये स्थिति हमारे सामने है। अब रही बात राघव चड्ढा की बीजेपी में आने की, तो इट इज जस्ट ए रिलेवेंस फॉर राघव चड्ढा ये कहने के लिए कि आई एम एक्टिव पॉलिटिशियन एफिलिएटेड और नाउ एसोसिएटेड विद बीजेपी। मुझे नहीं लगता इसके आगे बीजेपी को उनकी यूटिलिटी है, क्योंकि ही इज नॉट ए मास लीडर। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, और मैं जानता हूं इवन सिटिंग एमपी जो बीजेपी में जाना चाहते हैं अलग अलग पार्टीज के, लेकिन बीजेपी ने उनको एंट्री नहीं दी है। तो ये बात भी हमें समझनी होगी सर।
हाँ, तो राघव चड्ढा पंजाब से आउट हो गए हैं तो पंजाब वाले तो बहुत खुश होंगे ही होंगे। राघव चड्ढा तो सुपर सीएम की तरह काम कर रहे थे वहां पे।
नहीं, वो तो सर केजरीवाल की तो फितरत में है ना, वो तो आपको इस व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई जो आदमी किसी पे भरोसा नहीं करता हो, एक व्यक्ति बता दो केजरीवाल ने अपने अलावा किसी पे भरोसा किया, मुझे तो नहीं लगता इवन वो सुनीता केजरीवाल पे भी भरोसा पूरी तरह से करते होंगे। तो यहाँ पे सवाल इस बात का है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको केजरीवाल कह सके कि यार जो वो कह रहा है उसकी कर लो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ना पार्टी में ना सरकार में। तो इसीलिए हाईली इनसिक्योर व्यक्ति हैं, और उनको एक व्यक्ति चाहिए था जो पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको डेली लाइव टेलीकास्ट करता रहे, जैसे महाभारत में संजय जी का रोल था कि भाई महाभारत में क्या चल रहा है आप लाइव टेलीकास्ट करिए। तो राघव चड्ढा और कई ऐसे लोग हैं, एक नहीं ऐसे कई होंगे जो राघव चड्ढा पे भी नजर रखते होंगे। तो आप केजरीवाल के डीएनए को अगर आप समझते हैं तो वहां पे सर्कल में सर्कल है।
मुझे तो वो जो आपके बॉम्बे वाले जो डॉन्स होते हैं ना फिल्मों वेल्मों में दिखाए जाते हैं उस टाइप का ऑपरेशन लगता है ये तो।
पढ़े लिखे हैं ना सर, डॉन तो अनपढ़ होते थे, जब वो इतना सोच सकते हैं तो आप तो पढ़े लिखे हैं सर, यू विल हैव मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस, तो ये तो
अच्छा
पॉसिबल।
भगवंत, अब भगवंत मान जी की क्या स्थिति है? पूरी तरह फ्री?
भगवत मान जी अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे, और यही कारण है कि राघव चड्ढा के खिलाफ पंजाब के अंदर एक एमएलए ने स्टेटमेंट दे दिया है, वो भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, काफी उसके चर्चे हैं। और मुझे लगता है कि भगवंत मान को, मेरा तो मेरा अगर भगवंत मान मेरे से पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मेरा सुझाव तो मैंने पहले भी कहा था और आज मैं दोहरा देता हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद भगवंत मान को अपनी टीम को बैठा के ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि तब तक मुझे लगता है कोर्ट में और कई एविडेंसेस ऐसे आ जाएंगे जिससे केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे अभी कई एविडेंस आने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो सर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है कंप्लीट, उसके बाद तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फैक्ट्स पे डिस्कशंस होगा, और उसके साथ तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईडी और सीबीआई ने तो कह दिया हम चाहते हैं कि ये केस 1 साल में वाइंड अप हो जाए, जिसको सजा मिलनी है मिले, जिसको मुक्ति मिलनी है मिले। तो इसका मतलब यह है कि अगले पंजाब चुनाव से पहले ये क्लैरिटी आ जाएगी, और भगवंत मान क्या कह के बार दोबारा सत्ता में या चुनाव प्रचार में जाएंगे कि आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं। पहले तो ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी में इतना ईमानदार कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, अब वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो आपको कुल मिला के पंजाब के डेवलपमेंट पे ही फोकस करना होगा, और उसके लिए अब इनको सीरियसली सोचना चाहिए, और उसके लिए अगर हो सके तो जो दिल्ली का बैगेज है उसको हटाएं, क्योंकि वो ये लाइबिलिटी है, एसेट नहीं रहा। पहले केजरीवाल का नाम शुरू में एक एसेट की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वो एक्सट्रीम लाइबिलिटी बन गई, तो वो अब चलेगा नहीं। कांग्रेस के अपनी मजबूरियां हैं, अनफॉर्चुनेटली बीजेपी को ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और अकाली और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ हॉस्टिलिटी क्रिएट करी है, उसको हटने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और मुझे लगता है बीजेपी उसके लिए तैयार भी है। सुनर और लेटर तो बीजेपी विल बी ए आइदर प्रिंसिपल ऑफ पार्टी और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आइदर, तो ये देखना है सर। और तब तक मुझे लगता है भगवंत मान को अपनी रणनीति को दोबारा देखना चाहिए, पंजाब पे फोकस करें, दिल्ली को भूल जाए, डोंट वेस्ट टाइम। कम से कम हम उनको इतना तो आराम है कि ऑल इंडिया पंजाब ले नहीं घूमना पड़ रहा है केजरीवाल के साथ।
ऑल इंडिया टैक्सी सर्विस।
हाँ वो तो थी ना सर, ऑल इंडिया पंजाब टैक्सी सर, पंजाब एयर टैक्सी सर्विस, तो वो थी, वो
तो
नहीं रहा, तो अब वो लायबिलिटी खत्म हो गई, इसीलिए भगवंत मान को अब आप ट्रेवल करते नहीं देखेंगे। अब भगवंत मान अकेले तो कहीं जा नहीं रहे रैली करने, अब आप समझिए, पहले भगवंत मान को हर रैली में जाना पड़ता था केजरीवाल के साथ, अब केजरीवाल नहीं है तो भगवंत मान को इसका मतलब कोई आम आदमी का कैंडिडेट बुला ही नहीं रहा है कि आप आइए कैंपेनिंग के लिए। उसका फायदा यह है कि पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा बच रहा है, और जब आपका टाइम बच पैसा बच रहा है तो उसको पॉजिटिव काम में लगा लो। कम से कम पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के आप उस सीट को बचाने की कोशिश करो, और हो सके तो आम आदमी पंजाब करके आप एक सेपरेट रीजनल पार्टी रजिस्टर कर लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो दिल्ली में तमाशे हो रहे हैं और जो दिल्ली में खलीफा बैठे हैं, जो केजरीवाल ने सूबेदार कुछ चार पांच बैठा रखे हैं, वो आपको तंग करेंगे, तो वो तमाशा बनता
एक
रहेगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे।
बात और भी है, उसका जो है कुछ स्पिन ऑफ, ये जो पंजाब का और दिल्ली का डी फैक्टो जो डिवीजन हो गया है वो तो दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हम अभी बता रहे थे कि साहब की आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं वो जो 3 सीटें अलॉट हुई हैं कांग्रेस को वहां से गायब है, और कांग्रेस वाले जो बेचारे हैं वो अपना अलग ही इंतजाम करते घूम रहे। कह रहे 2 को तो खैर, उदित राज को और कन्हैया कुमार को तो कांग्रेस वाले ही नहीं भाव दे रहे, उनको तो आप आम आदमी वाले क्या देंगे। और जिनको कांग्रेस वाले भाव दे रहे हैं जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक में, तो वहां कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए हैं, 10 के 10 गायब।
सर आपको याद होगा जब इंडी गठबंधन बना था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी और आपके चैनल पे भी इस बात को बहुत क्लियरली कहा, इंडी गठबंधन क्यों फेल होगा, उसका कारण था कि अगर नेता बैठ के चाय पी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलाइन हो गई। आपने पूरी जिंदगी कांग्रेस को गाली दी, अब क्योंकि केजरीवाल को कुर्सी चाहिए और वो जाके किसी की गोदी में बैठ जाते हैं राहुल गांधी की, कि मेरे को बचा लो, क्या पूरी पार्टी जिसके खिलाफ आज तक उन्होंने कैंपेनिंग करी, क्या सब उनकी गोदी में जाके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है सर। आपने ग्राउंड लेवल पे कितने झगड़े किए होंगे अपने आइडियोलॉजी के लिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दुकानदारों से, मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से, कि नहीं आम आदमी अच्छी पार्टी है, आज जाके आप उसी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। आप एम्बेरेसिंग सिचुएशन देखिए ना एक कार्यकर्ता के लिए, वो तो हंस रहे होंगे कि साले हम तेरे को बोल रहे थे तू बेकार की पार्टी में, अब देख ले तेरा बॉस क्या कर रहा है। वो किस मुंह से कैंपेन करेगा सर? ये नेता जानते क्यों नहीं है इस बात को कि तुम अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर देते हो। तो इस समय जो लोग, मेरा परसों का वीडियो है अगर आपके दर्शक देखना चाहें, कि मोदी विरोधी वोटर्स के लिए समस्या हो गई है, मोदी के फॉलोअर हैं जिनको देना है उनको तो पता है कि कहाँ देना है, जो मोदी को वोट नहीं देना चाहते वो किसको दे, वो परेशान है। कैन यू इमेजिन कि यार हम तो सोच रहे थे केजरीवाल ये जाके बैठ गए, हम कांग्रेस से भाग के तो केजरीवाल के शरण में आए थे, अब ये जाके खुद वहां बैठ गए, अब हम क्या करें? तो ये उनके लिए परेशानी हो गई है। इसीलिए बहुत सारी जगह पे जो वोटर टर्नआउट कम हो रहा है वो इस फ्रस्ट्रेशन का भी नतीजा है, ये क्या तमाशा हो रहा है, कोई जरूरी है वोट देना, छोड़ो नहीं जाते। ये भी एक फैक्टर है सर, फैटिक फैक्टर हो जाता है कि जब आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, नेता नहीं है, आपकी कोई रणनीति नहीं है, जिसको आप कल तक गाली दे रहे थे आज फिर बीच में बैठ गए, फिर आप तो साथ में गोदी में बैठे हो और आप ही का कोई एमएलपी पड़ोस में आके फिर गाली दे जाता है, और फिर आप कहते हो नहीं नहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फिर वो 2 दिन ठीक रहते हो, तीसरे दिन फिर गाली गलौज हो जाती है, फिर पार्टी के कार्यकर्ता लड़ लेते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो ये जो इंडी गठबंधन था ये बेसिकली उन परिवारों का गठबंधन है जो अपनी अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक पब्लिक पोस्चरिंग करना चाहते हैं कि इस देश के रखवाले हम हैं, तो आप कुछ दिमाग मत लगाओ, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अब देश की जनता को सोचना है वो क्या चाहते हैं।
और हमारे अमानतुल्ला साहब कैसे हैं?
सरकारी मेहमान है सर, उनके तो जो कर्म है वो तो बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, उन्होंने जो भी दलीलें दी थी समन पे नहीं जाना, तो वो तो अब खत्म है सर। वो तो जिस तरह से उनकी कम्युनिटी में ही लोग उनके खिलाफ और उनके तो किए हुए काले कारनामे सारे के सारे सीबीआई और ईडी के पास विद एविडेंसेस हैं, तो उनका तो अब खत्म है मामला, कुछ नहीं बचना है उसमें, ही इज आउट। वो तो
कहने का मतलब ये
अमानतुल्ला
है कि
खान,
केजरीवाल केजरीवाल का कोई भी सिपहसालार बचा नहीं है।
सर आपने कोई रणनीति के तहत तो उनको लाए नहीं थे, आप तो फिक्सर ढूंढ रहे थे। सर फिक्सर की यूटिलिटी तब तक होती है जब तक आपका फिक्सिंग गेम चल रहा होता है, उसके बाद आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। जो लोग फिक्सर बनने का प्रयास करते हैं, चाहे वो राजनीति में हो या बिजनेस वर्ल्ड में हो, आप कहते हो ना मैं काम करवा दूंगा, आप जो बीच के मिडलमैन हैं या फिक्सर्स हैं, जिनका वैल्यू एडिशन सिर्फ इतना ही है जोड़ तोड़ की राजनीति या जोड़ तोड़ करके काम करवाना, किसी तरह से धंधा पानी चलता रहे, उन लोगों की लाइफ होती नहीं है, क्योंकि वो दे आर यूज एज ए टूल। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर क्लास के वोट की जरूरत है तो मैं आपके नेता को थोड़े समय के लिए अपने साथ बाजू में बैठा लूंगा, फोटो खिंचवा लूंगा, आपके वोट एक बार मुझे मिल गए उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई, उसको काहे को ढूंढूंगा सर मैं। जो यूटिलिटी वाले लोग होते हैं, जो फिक्सर्स होते हैं, दे आर यूज एंड थ्रो कमोडिटीज, इनकी ज्यादा यूटिलिटी होती नहीं है। तो केजरीवाल अनफॉर्चुनेटली यही अपनाई है। केजरीवाल की जो रणनीति है वो यूज एंड थ्रो है। आपने पहले सारे इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा किया, अन्ना हजारे को इकट्ठा किया, आपको कुर्सी मिल गई, अब क्या करना है अन्ना हजारे का, रवाना करो। जब मैं प्राइम मतलब चीफ मिनिस्टर बन गया हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब प्रशांत भूषण, आपका कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, जबरदस्ती इंटेलेक्चुअल बन रहे हो कि नहीं ऐसा करना है वैसा करना है। अरे अब तुम अपना काम करो, मेरे को कुर्सी चाहिए थी मिल गई, अब तुम जाओ यहां से, अब मुझे जो करना है मैं ढूंढूंगा और लोग। फिर सत्येंद्र जैन जैसे लोगों की जरूरत है जो हवाला की ट्रांजेक्शन को मैनेज कर सके, तो फिर मुझे हवाला वाले लोग चाहिए। फिर मुझे राज्यसभा की सीटें ऑक्शनिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे राघव चड्ढा चाहिए। तो
ये
ये
कैसे लोग हैं, ये सारे के सारे फंस गए जाके। राघव चड्ढा भी जल बोर्ड में फंसे हुए हैं, तो वो भी अप्रूवर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं।
सर ऐसा है कि जब आप किसी के एहसान तले हो, इनमें से एक भी आम आदमी का नेता मास लीडर नहीं है, ये तो आप मान लोगे। आम आदमी में से आप केजरीवाल को हटा दो तो बचता क्या है, आप खुद सोचिए सर। आम आदमी से आप केजरीवाल हटा दीजिए वर्ड, इस ऑर्गेनाइजेशन में बचता क्या है? कोई आइडियोलॉजी आपको दिखती है? कोई संगठन दिखता है? कोई नंबर टू दिखता है? कोई नंबर थ्री दिखता है? नंबर फोर दिखता है? कोई नहीं है। तो ये एक झुंड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अवसरवादी लोगों का एक झुंड है, जिनको लगा कि यार अन्ना आंदोलन के बाद हम लोगों को मीडिया कवरेज मिली और हम केजरीवाल के करीब आ गए, केजरीवाल को भी लोग चाहिए थे, उस समय उसने भी 50 लोगों को अपने आसपास इकट्ठा किया, सबको अलग अलग काम बांटे, सबको यूज किया, जो जो काम खत्म होता गया, जिसके हवाले जो काम था उसको बाहर निकालते गए। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, आप उठा के देख लीजिए सर, मैं जो कह रहा हूं आप उसका पूरा एक्सेस कर लिए पिछले 12 का।
अच्छा,
और
ये
जो लोग
इसमें
अंदर थे, जो अंदर का जिसको कहते हैं ना कि रहस्य जानते थे, जो अंदर के स्केलेटन्स कहाँ रखे हुए हैं वो सब जानते थे, उनको हर कीमत पे केजरीवाल ने बचाया है, उनके लिए आंसू भी बहाए, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुंह खोल दिया तो इनकी जो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, ये उसको पता है। इसीलिए सत्येंद्र जैन, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके खिलाफ केजरीवाल एक शब्द नहीं सकता, इनके खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकता, जिस दिन उन्होंने मुंह खोल दिया केजरीवाल नहीं बच पाएगा। तो ये एक मजबूरी का गठबंधन है जो आज धीरे धीरे हम सबके सामने विद एविडेंस क्लियर होता जा रहा है, जो मैं पहले से कह
अच्छा,
रहा था हमारे
एक
पास
एक चीज़ जो है, एक चीज़ का विश्लेषण करें, ये जो पूरा का पूरा जो ये केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी जो बनाई गई है, पूरा का पूरा हम जानते हैं कि ये वेस्टर्न डीप स्टेट का जो इकोसिस्टम है उसी ने इसको प्रमोट किया। अब उसने इसको पहले तो प्रमोट किया, और वो किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्योंकि शायद मेरे विचार से आप इसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं या और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। जिस तरह से उनको भारत को चलाना था वो कांग्रेस पार्टी इनको नहीं दे पा रही थी, तो उन्होंने एक नया ऑल्टरनेटिव बनाया, एक ट्राई किया कलर रेवोल्यूशन, और डेमोक्रेटिक कलर रेवोल्यूशन हो गया उल्टा, वो सत्ता चली गई नरेंद्र मोदी के पास में। तो उसके बाद से जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी को भी प्रमोट कर रहे हैं और इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों में से इनका फेवरेट कौन है और फेवरेट कौन है?
सर देखिए ऐसा है कि जो डीप स्टेट है ना, उसका एजेंडा बहुत क्लियर है, उसको कोई फेवरेट से मतलब नहीं है। उनको ये पता है कि हमें किसको अपने कंट्रोल में रखना है, कोलिशन बनाए, गठबंधन बनाना है, अलग करना है, किसको अगली कुर्सी पे बैठाना है, किसको पीछे बैठाना है, किसको दाएं बैठाना है, किसको बाएं बैठाना है। सर ये सब कठपुतलियां हैं, पीछे जो हिडन हैंड है वो कुछ और होते हैं। और जैसा आपने कहा, और मैंने अभी थोड़े दिन पहले, दो दिन पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था कि क्यों विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि मोदी वापस आए। देखिए दुनिया का भारत सबसे बड़ा बाजार है, इस बाजार को खोलना चाहते। अब आपने पूरी दुनिया में क्राइसिस देखा है, चाइना आपको घास नहीं डाल रहा है, यूरोप अपनी क्राइसिस में उलझा हुआ है, अमेरिका को बाजार चाहिए वो मिल नहीं रहा, अफ्रीका में पैसा नहीं है, लैटिन अमेरिका में वैसे ही पॉपुलेशन नहीं है, छोटे छोटे जो देश हैं उनकी इतनी जरूरतें नहीं है, तो आपको 1.1 बिलियन पॉपुलेशन का बाजार कहां मिलने वाला है इंडिया और चाइना के अलावा? तो दुनिया का हर व्यक्ति मोदी से इसलिए दोस्ती करना चाह रहा है कि उसकी दुकान चलती रहे, और साथ ही साथ अंदर ही अंदर वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी हट जाए, कोई ऐसा यहां व्यक्ति बैठे जिसको हम चला सके, क्योंकि मोदी ने दो तीन जो काम दिए उसे इनके लिए मुश्किलें आ गई। एक तो था कोविड वैक्सीन, इसने ये प्रूव कर दिया कि यार तुम अगर धंधा करने निकले हो तो हम भाई गिफ्ट दे के भी काम कर सकते। तो उसने एक नैरेटिव बदला है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। दूसरा, यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिका और यूरोप का ब्लाइंड साथ ना देकर इंडिया ने यह प्रूव कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर डिक्टेट। तो इससे वो बहुत विचलित हैं, और वो इंडिया को इसलिए नकार नहीं सकते क्योंकि चाइना को काउंटर कैसे करेंगे? इमेजिन करिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इंडिया रशिया चाइना अगर इकट्ठे हो जाए तो बचा क्या है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, क्योंकि सारी बाजार
अमेरिका
की आठ, तो ये आपकी इकोनॉमिक गेम खत्म। बाकी जो बचे हुए देश है वो सब रिजिड पॉपुलेशन है, और आईटी का जमाना है, यहां बैठ के हम इंटरनेट के माध्यम पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। टुडे मेनी चाइनीज टेक्नोलॉजी आर फार सुपीरियर, और मैं एक वीडियो और बना रहा हूं, मैं आपको उसका टाइटल बता देता हूं, सून आईफोन विल बी बीटन बाय दिस फोन, आईफोन इज ऑन द वर्ड ऑफ डिक्लाइन, चाइना चाइनीज मोबाइल कंपनीज विल रिप्लेस आईफोन बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप इनके टेक्निकल डेवलपमेंट्स के क्रिटिकल रिव्यू पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा शौक है बीइंग ए टेक्नोक्रेट, आई लव टू रीड मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल एरियाज, तो मैं ट्रैक करता हूं। मैं आपको साफ बता रहा हूं, 2 साल के अंदर अंदर आपको पता लगेगा कि आईफोन से बेहतर और सस्ता फोन चाइना दे रहा है। और अगर आपको लेटेस्ट डेटा देखना हो तो चाइना के अंदर पिछले क्वार्टर में आईफोन की सेल $2.5 बिलियन कम हुई है। चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर आईफोन।
तो ऑलरेडी अब तो इंडिया शिप कर रहा है बहुत बड़ा हिस्सा,
शिप कर रहा है, लेकिन सर मुझे ये टेक्नोलॉजी में अगर मेरे को उससे सस्ते दाम पे उससे अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा? ये डिलेमा इंडिया को झेलना पड़ेगा आने वाले 3 साल में, मैं बता रहा हूं सर। इंडिया की स्थिति यह हो जाएगी कि मेक इन इंडिया के नाम पे शुड बी बाय सबस्टैंडर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये सिचुएशन आपकी आने वाली है, क्योंकि सुपीरियर प्रोडक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो आप मेक इन इंडिया और एंटी चाइना के चक्कर में इंडिया का आप सबस्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करोगे? ये चैलेंज आज अमेरिका के सामने है, ये चैलेंज यूरोप के सामने, ये चैलेंज इंडिया के सामने। तो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ चेंजेस इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स।
तो अब इसके जो इस समय राहुल गांधी ने इकोनॉमी अपनी प्रेस्क्राइब की है, ये तो सीधे सीधे डीप स्टेट का प्रेस्क्रिप्शन है।
सर ऐसा है ना कि आइडियोलॉजी कुछ तो दिखानी है, और कुल मिला के अब क्या हो रहा है, एक तरफ आप बात करते हो एंटरप्रेन्योरशिप की, फिर आप घूम के आ जाते हो सोशलिस्ट मॉडल पे, और फिर आप आइडिया प्रमोट करते हो कम्युनिज्म का, और फिर आप कहते हो कि इंडिया शुड ग्रो लाइन ए कैपिटलिस्ट। कैसे होगा सर, क्लैरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए ना सर। मेरा ये कहना है कि आपका संविधान एक चीज बोलता है कि आप स्वतंत्र हो, आपको जो प्रोफेशन चूज करना है यू आर फ्री, यही हमारा संविधान है। नहीं हम नहीं मानते, आर्टिकल 19(1)(g) क्या बोलता है, यही तो बोलता है सर। लेकिन ये कहता है नहीं हम सबकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखेंगे किसके पास कितना पैसा है। भाई अगर चोरी से उसने कमाया तो जेल में डालो ना, अगर आपको एविडेंस है कि उसने चोरी से पैसा कमाया है तो आपने कार्रवाई क्यों
हाँ
नहीं करी
तो
आज तक।
उसके लिए कानून है, ईडी का कानून है, हमारे योगी जी का कानून है। देखिए योगी जी ने वहां पे लॉ लगा रखा है, और जो भी जो है बदमाशी से जो माफिया है जो पैसा कमाता है वो जब्त कर लेते हैं सीधे।
मैं वही कह रहा हूं ना सर कि भाई आप, आपको लगता है कि ये इलीगल मनी है, चाहे वो टैक्स चोरी की मनी है या स्मगलिंग का पैसा है, जो भी आपको लगता है, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कानून है। तो आपने उन कानूनों के तहत जिन आपको शक है कि अमीर बन गए आउट ऑफ टर्न, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और लोग अपनी मेहनत से अगर अमीर हो रहे हैं तो आपको दर्द क्यों है। तो सवाल इस बात का है कि हम खुद ही शायद क्लियर नहीं है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, और यही प्रॉब्लम मुझे लगता है इस समय कांग्रेस, 10 साल से सत्ता से बाहर है। और एक जिसको कहते हैं ना जनरेशन गैप, आज की दुनिया में सोशल साइंसेज में आप मैक्सिमम आप ये मान सकते हो कि जनरेशन गैप 15 इयर्स, इट्स नो मोर 50 इयर्स, और आईटी की दुनिया में तो जनरेशन गैप इज मे बी 2 ईयर 1 ईयर। और जो ट्रेंड चल रहा है फैशन और स्टाइल्स के अंदर, मेरे को लगता है 3 से 5 साल। तो अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम भी मान लूं सर कि एक आदमी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी 15 साल पहले 2014 में, उसको लग रहा है यार कि मैंने 40 साल की उम्र में ज्वाइन करी और मैं रिटायरमेंट एज में आ गया, एक बार भी मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा, और नई जनरेशन मेरे सामने आ गई, अब मुझे कौन पूछेगा। तो उसकी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन समझिए सर, उसने 15 साल अपनी जिंदगी के दे दिए कांग्रेस को और उसको कुछ नहीं मिला, उस बेचारे को आज तक किसी ने पूछा नहीं, तो उसका तो फ्रस्ट्रेशन है ना सर। तो उस डेस्परेशन के अंदर इनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। तो यहां अब लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई इतना क्राइसिस हो रहा है यहां पे, हम आपको नई राजनीति देंगे, नया कोई वक्त, क्या नया देंगे सर, कौन सा नया लीडर है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका मंत्रिमंडल क्या होगा, सोचिए सर।
हाँ बता सकते हैं, मुझे पता है कि गृह मंत्री ममता बनर्जी बनेंगी उनकी,
फिर क्या होगा सर,
और शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर उनके बनेंगे शरद पवार,
अगर
और
जनता,
केजरीवाल क्या बनेंगे, स्कैम मिनिस्टर। इसके
नहीं सर
अतिरिक्त और
मुझे
भी
तो ये,
बहुत से हैं। मैंने एक एक वीडियो में मैंने ये सजेशन पूछे थे, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे कि भाई कौन क्या है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो। और वैसे जो भी उनके मंत्री बनेंगे उनका एक ही उद्देश्य होगा कि किस तरह से राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से नीचे खींच के गिराया जाए, वो तो निश्चित है। लेकिन जो जो भी बनेगा मंत्रिमंडल तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा।
नहीं सर ये तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वाजपेयी साहब जब सरकार में प्राइम मिनिस्टर थे उस समय शरद जोशी साहब ने एक शेडो कैबिनेट बनाई थी, मुझे याद है 2003-04 के आसपास की बात, और उसमें मुझे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया था शरद जोशी साहब।
अच्छा
यार विजय ये तेरी लाइन है और तेरे से अच्छा ये सब्जेक्ट को कोई नहीं जानता, तो फूड प्रोसेसिंग तुम, मैंने कहा सर टेंशन ही मत लो, हम
हाँ
पूरा नक्शा बदलेंगे, खेत से लेकर लोगों के घर तक सेफ फूड कैसे पहुंचाना है। क्या दोगे? तो फिर हमने एक प्रेजेंटेशन भी किया था उनके घर में, वहां पे वो विज्ञान भवन के सामने रहा करते थे, तो वहां हमने उनके घर में बैठ के काफी चर्चाएं हुई कि होम इसको दिया है उसको दिया, बोले दैट वाज इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी ऑपोजिशन जो इंडिया गठबंधन है, कम से कम उनको एक अपना शेडो कैबिनेट तो प्रस्तुत करना चाहिए। तो मेरा ये इसलिए कहना है कि मान
आप शैडो कैबिनेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक तो दिया नहीं है, सब अपने अलग अलग मैनिफेस्टो बना रहे हैं।
सर,
एक
मैं
कह रहा है
इसीलिए
कि
कहूं
साहब कि वो एक कह रहा है कि वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और दूसरा आपका वो कह रहा है कि क्या वो कम्युनिस्ट वालों ने क्या आप आइडिया प्रपोज किया है, उन्होंने भी तो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग आइडिया प्रपोज किया है ना।
सर, मैं क्या कहना था, कैबिनेट का ये कहना था कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी की टीम में जनता को लगता है कि यार ये अच्छे लोग आ गए, चाहे वो इंपोर्ट करें कुछ उनके स्पेशल एडवाइजर्स, हो सकता है नीति आयोग में अमेरिका से कोई आ जाए, कोई यूरोप आ जाए, कोई IMF से आ जाए, कोई वर्ल्ड बैंक से आ जाए, बहुत सारे इनके दोस्त वहां हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान
हाँ,
लीजिए कि राहुल
एक मिनट,
गांधी
मुझे याद आ गया, सीपीएम ने प्रपोज किया कि वो सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल कर देंगे।
हाँ यस 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 वो बात सही है। तो मेरा वही कहना है ना सर कि अगर हमारे सामने एक शेडो कैबिनेट आ जाए तो कम से कम जनता के बीच में एक मैसेज ये जाएगा कि अगर राहुल गांधी डगमगाएंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर तो नीचे पूरा कैबिनेट है संभालने के लिए। उदाहरण के लिए आज फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, अगर मोदी साहब किसी इंटरनेशनल फोरम में नहीं जाते हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी जाते, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी को जरा भी शक होता होगा कि यार ये आदमी काम कर पाएगा या नहीं, क्योंकि दोनों में इक्वल ट्रस्ट है। इसी तरह से बाकी सेक्टर्स में तो एक शेडो कैबिनेट का फायदा ये होगा कि राहुल गांधी के पास एक प्रॉपर बैकअप टीम है, तो उनका जो जनाधार है या जो लोगों को उनकी काबिलियत पे शक है उनको शायद ये भरोसा होगा कि नहीं यार इनको एक बार मौका देना चाहिए। देखे तो सही ये लोग जो इतने नामी लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। मेरा पर्पस वो था, नॉट टू डिमीन एनीथिंग। तो ये एक बात समझने की है।
जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न कृपया व्हाट्सएप और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा, चूंकि हमने राहुल इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर ली, जो कि इकोनॉमिक्स तो क्या है, वो सम काइंड ऑफ अ रिहैश, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, जनता का मूड बिल्कुल नहीं समझते। खैर, वो तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जो इनइक्वालिटी की आजकल बात कर रहे हैं कि साहब हमको इनइक्वालिटी घटानी है, हमको इनइक्वालिटी घटानी है, इसका क्या मेजर है, कहाँ से निकाल रहे हैं? कुछ वो रिसर्चर्स हैं जो बड़ी बेकार सी है, आपकी एक इनइक्वालिटी लैब बना रखी है उन्होंने, और उसमें जो है वो एक लोडेड टाइप के जो है वो दिखाते हैं उसमें, जबकि जो भी स्टैंडर्ड जितने भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है और हमारे NSSO का डेटा दिखा रहा है कि जो जीनी कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली कम हुआ है,
सर,
लेकिन
मेरा एक ही मानना है सर, आपको अपने खेत में पानी डालना है। मैं बहुत कॉमन सेंस की बात करें ना सर, आपको अपने खेत में पानी डालना है, आप क्या करेंगे? एक साथ पूरे खेत में बराबर पानी पहुंच जाता है? ऐसा होता है क्या? आप कहीं पे एक ऊंचे लेवल पे कोई कुंड बनाते हैं, अगर आपके पास मोटर सिस्टम नहीं है तो आप कहीं पे एक रिजर्वायर बनाते हैं, उस करते हैं, वहां से फिर वो फ्लो होके नीचे लेवल पे जाता है। वेल्थ के साथ भी यही। अगर आप ये कहते हैं कि जे अडानी साहब के पास, अंबानी साहब के पास, टाटा के पास, आदित्य बिरला ग्रुप के पास, महिंद्रा के पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए, तो भैया लूटे तो नहीं उन्होंने, मेहनत करी। अगर वो इतना खराब माल बना रहे थे तो आप खरीद क्यों रहे थे? मत खरीदो। अल्टीमेटली पैसा कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है ना सर। और कस्टमर के पास चॉइस है। अगर आज मान लीजिए कि मोबाइल सर्विस खराब है तो सारे के सारे छोड़ के एयरटेल क्यों नहीं चले जाते, या वाइस वर्सा अगर एयरटेल की खराब है तो सारे छोड़ के रिलायंस में माइग्रेट क्यों नहीं कर जाते, चॉइस तो है ना। तो क्यों हो रहा है ये? तो सवाल इस बात का है कि पैसा कौन दे रहा है भाई। मंथली बिल तो आप और हम दे रहे हैं ना। ऑब्वियसली जब मैं सर्विस ले रहा हूं और मेरे पास चॉइस है कि मैं कौन सा प्लान लूं, मान लीजिए मैंने सबसे सस्ता प्लान ले लिया, उसमें 5% तो प्रॉफिट रखेगा कोई भी बिजनेसमैन, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा। और अगर करोड़ों लोग हर महीने का 10-15 रुपए उनकी जेब में डाल दे प्रॉफिट, तो वेल्थ तो क्रिएट होगी ना। पहली बात, कोई लूटमार तो नहीं कर रहा, कोई किसी की जेब तो नहीं काट रहा है, पहला सवाल। दूसरा मुद्दा ये है सर कि आप कहते हो कि नहीं हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर फैक्ट्री चलाने के लिए, मैं अगर फैक्ट्री चलाता हूं, मैं अपने पास मिनिमम 2 महीने की इन्वेंट्री तो, चाहे मैं उस दिन एक दिन में मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी मान लीजिए कि 600, ठीक है सर, तो 600 टन का माल अगर मैं रखूंगा तो कल फैक्ट्री कैसे चलेगी। मैं तो प्लानिंग करूंगा ना कि मेरे को अगर रोज का 500-600 टन सोयाबीन प्रोसेस करना है तो मैं कम से कम 2 महीने का तो रखूं। कभी बाढ़ आएगी, कभी सूखा आएगा, मंडियों में हाल होगा, कभी नहीं होगा, कभी और क्राइसिस हो सकते हैं, बीच में चुनाव आ जाते हैं, फिर ईद की छुट्टियां आ जाती हैं, फिर रामनवमी आ जाती है, बाकी छुट्टियां होती हैं। सब चीजों को कंसिडर करके एक बफर प्लान, एक इन्वेंट्री प्लान, एक बिजनेस प्लान बनता है। अगर आप ये कहें कि जी विजय जी ने देखो 40,000 टन सोयाबीन इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये तो बेइंसाफी है, तो फैक्ट्री कैसे चलाऊंगी, रोज 5-5 किलो खरीद लाऊंगा बाजार से। तो सरकार के ये भी देखिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मैं आपको देता हूं, वो है एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट का मतलब क्या, जब महंगाई बढ़ जाती है तो आप कानून लगा दे हो कि आप 100 टन से ज्यादा माल नहीं रखोगे या 50 टन से माल नहीं रखोगे, यही किया जाता है। टेक्निकली वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही है ना, किसी के गांव में पड़ी थी आपने उसको निकाल दिया। होता क्या था सर, महंगाई ज्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए था मिलता नहीं था, क्योंकि उसने पीक सीजन में खरीदा ये कह के कि मेरे को पीक सीजन में खरीदना है, मेरी रिक्वायरमेंट 1,000 टन है तो मैंने खरीद के 1,000 टन चीनी रख ली अपने पास, अब मैं अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करता रहूंगा। आपने कहा नहीं जी आप 50 टन से ज्यादा नहीं रख सकते, मैंने उठा के चीनी बेच दी, बाजार में वैली शॉर्टेज थी। तो जो चीनी मैं अपने यहाँ पे 20 रुपए या 40 रुपए किलो की इस्तेमाल कर रहा था, अब बाजार में अगर वो 60 रुपए, तो मुझे 60 रुपए खरीदना पड़ेगा ना, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 से बढ़ के 60 हुई ना, फिर उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन प्रोपोर्शनेटली रेशो के हिसाब से उसका टैक्स, तो महंगाई घटी या बढ़ी, समझते नहीं है। तो कहने का मतलब यह है सर कि ये सब तमाशे हैं, बिना सोचे समझे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वेल्थ छीनोगे सर आप, आपको संविधान के आधार देता है इस बात के लिए। और मान लीजिए आपको आप सत्ता में आए तो आपको हम संविधान बदलेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी से अपने आप को कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दो ना, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
ये वेनेजुएलन मॉडल पे जाना चाहते हैं ये, लेकिन वेनेजुएला के जो रिसोर्सेस थे वो उसके उतने रिसोर्सेस तो हमारे पास है नहीं। इतना निश्चित है कि यदि ये फैंसी आइडियाज लाएंगे कि साहब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर टैक्स हाई करो, कॉरपोरेट टैक्स हाई करो, तो उसका नेट रिजल्ट केवल होगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, और जब कैपिटल फ्लाई आउट कर जाएगी तो ग्रोथ डाउन हो जाएगी, तो ग्रोथ डाउन हो जाएगी तो टैक्सेस डाउन हो जाएंगे, तो उसका इनके पास जब उपाय नहीं होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और पता चलेगा उससे फिर ग्रोथ फर्दर डाउन हो जाएगी, और ये विशेष साइकिल जो है वो लेके पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर।
सर इसमें क्यों हम दूर जाते हैं, 91 का इशू क्या था सर, मनमोहन सिंह पागल थे क्या? अगर आपके देश में सब कुछ था और आप सब इतने विद्वान थे, इंदिरा गांधी जी इतनी विद्वान रही हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, 91 का चेंज क्यों किया आपने? राजीव गांधी भी कर सकते थे ना, नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की टीम ने मिलके जो लिबरलाइजेशन इन्वेस्टमेंट उसके बाद आया ना, उससे पहले तो आप नेशनलाइजेशन ही कर रहे थे सर। कहां पहुंचे आप? नेशनलाइजेशन के मॉडल से आप दिवालिया हो गए थे, ये तो बात पक्का है। फिर आपने लिबरलाइजेशन किया और लिबरलाइजेशन के समय भी आपकी हालत ये थी कि यहां कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, फिर आपको कॉर्पोरेट टैक्स कम करने। अब आप कहते हो हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी के लिए कोई इन्वेस्टर चाहिए। आप कहते नहीं, इन्वेस्टर कैसे आएगा, उसके पास पैसे, वी हेट रिच पीपल, भाड़ में जाओ तुम। जब मेरे को तुम आने नहीं दे रहे, प्राइवेट कैपिटल की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा? जब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो आपको जॉब क्रिएशन कैसे होगा? और जब मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट कर नहीं रहा, जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा, तो आपको जीएसटी कैसे मिलेगा जो आप सब कुछ लॉलीपॉप फ्री बांटना चाह रहे हो? ये जनता को मूर्ख बनाने के अलावा ये कुछ नहीं है। और जो हमारे लोग इस स्लोगन में बह जाते हैं कि साहब रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सर बात बहुत सिंपल है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। कारण बहुत सिंपल है कि आज की तारीख में मुझे ये बता दीजिए कितनी बार आप लोग गए हो रेलवे स्टेशन टिकट बुक कराने, मेरे से कितने लोग गए हो बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल जमा कराने के? आप में से कितने लोग गए टिकट को काउंटर पे बुक कराने? सुविधा मेरे को घर बैठ के चाहिए सारी ऑनलाइन, लेकिन रोजगार चाहिए। अरे आदमी रखेंगे किस लिए, जरूरत ही नहीं है। हर एयरलाइंस ने अपनी टिकट खिड़की बंद कर दी ना शहरों में, तो सवाल इस बात का है। किस एक तरफ आप कहते हो कि हमें एम्प्लॉयमेंट दो, फिर कहते हो सरकारी बाबू काम नहीं करता, फिर आप कहते हो साहब मेरी फाइल मिल नहीं रही, कोर्ट तक ने तो बोल दिया कि आप सारे पेपर ऑनलाइन फाइल करोगे। तो सवाल इस बात का है कि हम जब सर्विस लेने जाते हैं एज ए सिटीजन, एज ए कस्टमर, हम उम्मीद करते हैं वर्ल्ड क्लास सर्विस इंस्टेंट मिले, लेकिन जब मैं बाजार में जाता हूं तो मैं कहता हूं मुझे जॉब चाहिए जिसमें मुझे काम नहीं करना पड़े। अब ये ऐसे कभी ये सस्टेनेबल होगा ऑप्शन? तो हम लोग जबरदस्ती खुद ही गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और गलत एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिशियन उन एक्सपेक्ट को हवा देते हैं और हमको लगता है कि दिस इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जबकि उनको भी पता है कि जो ऑडियंस मांग रहा है उनको खुद नहीं पता कि वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है। पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पंजाब में आप 1,000 रुपए हर लेडी को देंगे, दे दिए क्या? 2 साल हो गए आपकी सरकार को, पैसा है आपके पास? केरल
सारी
पार्टी
सारी इंडस्ट्री भाग चुकी है क्योंकि उन्होंने वेल्थ इक्वलाइजेशन में सारी बिजली फ्री कर दी, तो उसका मिसयूज होने लगा, इंडस्ट्री को बिजली महंगी करनी पड़ी, सारी इंडस्ट्री भाग गई, आपका रेवेन्यू कम हो गया, आपकी रेवेन्यू डेफिसिट हाईएस्ट हो गई पूरी पूरे भारत में, और उसके बाद आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, वेल्थ इक्वलाइजेशन तो हो गया।
हाँ तो सब गरीब हो गए ना, इक्वल हो गए सब, सब भूखे हो गए, सब इक्वल हो गए। भाई पहले आपको प्रॉब्लम क्या थी कि संजय जी खा रहे हैं यार चेयर पे बैठ के नीचे पतल में, आप खा रहे हो क्रॉकरी में, स्टील की प्लेट में, ये अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इक्वल
और
वेल्थ क्या है, सबको
पंजाब
गुरुदत्त क्या?
का पंजाब का सारा एंटरप्रेन्योर जो है वो जा रहा है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने, बताइए आपने कभी 20 साल पहले सोचा होगा ऐसा संभव है?
मैं वही कह रहा हूं ना सर, तो यहां पे तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पज ये है कि सबसे सबको छीन लो और सबको जो यार गुरुद्वारे जाके खाओ, नीचे पत्तल लगा के सब पंगत में बैठो, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, इज कॉल्ड वेल्थ इक्वलाइजेशन। पता ही नहीं लगेगा किसके पास घर में कौन
और
सी थाली।
केरला केरला जो बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है कि साहब की जो है जो बेस्ट एग्जाम्पल है, मॉडल स्टेट है, उसने अभी अभी एक तरह से सिविल जो सूट दायर किया था 131 में, जो सिविल सूट दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो तो एक तरह से बैंकरप्सी की एप्लीकेशन ही तो थी और क्या था।
सर मेरा वीडियो है उस पे, बकायदा विद स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैंने यही कहा है कि हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा राज्य, सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा एनआरआई वाला है राज्य को कैसे दिवालिया किया जाए, ये केरल मॉडल है। आप देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम में केरल वन ऑफ द हाईएस्ट। तो कहने का मतलब है कि सबसे पढ़ा लिखा और सबसे अमीर राज्य को सरकारें कैसे दिवालिया घोषित करती हैं, ये आप केरल देख लो ना। अगला नंबर पंजाब का है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कटोरा लेके कि सर वो भीख नहीं दे रहे, आप दिलवा दो।
अल्टीमेटली बना हो गया।
देश का कानून है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहना है, आप तो अभी मस्ती करके निकल जाओगे, भुगते ही आने वाली जनरेशन, आप तो बैंक से 50,000 करोड़ रुपए ले लोगे, उसको फिर बांट दोगे इलेक्शन लॉलीपॉप में, आप तो इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। आने वाले जो लोग होंगे उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो सैलरी दे सके, तो यू आर पुटिंग देम इन डेट ट्रैप। और ये बात हमारे पॉलिटिशियन को इसलिए समझ में नहीं आती कि उनकी जेब से क्या जाना है। अगर वो पॉलिटिशियन नहीं भी रहे, एमएलए एमपी भी बन के रिटायर हो गए, तो कम से कम टैक्स पेयर तो उनके घर का खर्चा दे ही रहा है ना, पेंशन उनकी जेब से क्या जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इरेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। और क्या है ये?
आइए चलते हैं, थोड़ा दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं।